16 नंबर के रजिस्टर में 6 पेज पर 29388 का पैकेट ब्लॉक रिकॉर्ड चला है तुम्हें पार के हमने जहाँ पा लिया है। बच्चों ने गीत की दो लाइन सुनी, जबकि हमने बेहद के बाप को पा लिया है तो बेहद के बाप से सारे विश्व की बात चाहिए हम ले रहे हैं। हद का बाप है तो 4, 6, 8, 10, 15, 20 बच्चों का बाप होगा, और बेहद का बाप है तो जरूर बेहद माना 500 करोड़ का बाप हमने पा लिया। तो 500 करोड़ का बाप कौन होता है? एक तो है आत्माओं का बाप, बेहद का बाप, परंतु आत्माएं तो बहुत हैं। मनुष्यों की ही आत्माएं नहीं, कीट पशु पक्षी पतंगों सब की आत्माओं का वो बाप है। लेकिन यहाँ बात किसकी हो रही है? मनुष्य सृष्टि की। तो मनुष्य सृष्टि का बाप है प्रजापिता। तो अगर हमने बुद्धि रूपी हाथ से ये जान लिया, कैच कर लिया कि मनुष्य सृष्टि का पिता कौन है, आदम कौन है, एडम कौन है, जिस एडम या आदम या आदिदेव में परम पिता परमात्मा सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु आता है नई सृष्टि रचने के लिए, तो अगर वो हमारे बुद्धि रूपी हाथ में आ गया, वो मनुष्य सृष्टि का बीज, तो बीज में तो सारा वृक्ष समाया हुआ होता है। बीज आ गया तो जैसे सारा वृक्ष हमारे हाथ में आ गया। ये तो बिल्कुल साधारण बुद्धि से भी समझ सकते हैं कि भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था, लक्ष्मी नारायण का घराना था, जैसे एडवर्ड दी फर्स्ट सेकंड राजाई चलती है ना, वो तो हद में है। ये है बेहद में। यूनाइटेड किंगडम में उनकी राजाई थी, किनकी? किंग एडवर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड की। भारत जब लक्ष्मी नारायण के राज्य में था तो सारे विश्व परेणों का राज्य था, ये बात मनुष्य भूल गए। अब तुम बच्चों ने बाप को पा लिया तो गोया विश्व की राजा ही पा ली। बाप खुद कहते हैं, बच्चे तुम भूल गए हो, इस भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था, सतयुग था, तो तुम सारे विश्व के मालिक थे। पार्टीशन आदि कुछ भी नहीं था, लक्ष्मी नारायण डबल से ताज थे, सिर पर ताज था डबल। डबल ताज क्या होता है? सिंगल ताज क्या होता है? एक तो होता है थूल ताज, जो राजाओं का होता है रत्न जड़ित स्थूल रत्नों का, और यहाँ कौन सा रत्नों का है? ज्ञान रत्नों का। तो जितना जितना आत्मा में ज्ञान की लाइट होगी, जितना आत्मा में ज्ञान रत्नों की लाइट होगी, उतना समझो बड़ा ताज होगा। वो है ज्ञान रत्नों की लाइट का ताज, और वहाँ होगा स्थूल रत्नों का ताज, दूसरी लाइट प्योरिटी की लाइट। देवताओं के आसपास प्योरिटी का वलय दिखाते हैं, मस्तक के आसपास, शरीर के चारों ओर नहीं, मस्तक के चारों ओर। तो मस्तक में रहती है आत्मा, मन बुद्धि रूपी आत्मा, तो वो हुआ पवित्रता का ताज। यहाँ जिसने जितनी प्योरिटी की पावर को धारण किया, तो वो प्योरिटी की पावर, प्योरिटी की पर्सनालिटी यहाँ भी अनुभव में आवेगी, अपने को भी तो दूसरों को भी। तो लक्ष्मी नारायण डबल सिरताज थे, बड़े बड़े राजे लोग भी पूजा करने के लिए अपने महलों में मंदिर बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण का व राम सीता का मंदिर बनाते हैं, ये भी भारत के राजे और यह भी भारत के राजे। द्वापर युग से जो मंदिर बनाने वाले राजाए हैं वो भी राजे थे, और सत्ययुग त्रेता में जो राजाए हुए लक्ष्मी नारायण या राम सीता वो भी राजे थे। अंतर क्या हुआ? वो डबल सिर ताज और वो सिंगल ताज वाले। तो सिंगल ताज वाले जो पतित राजाए हुए उन्होंने डबल सिर ताज देवताओं के मंदिर बनाकर उनकी पूजा की। तो ये शूटिंग भी कहाँ होती है? शूटिंग भी ये संगम ऊपर ही होती है और होनी है कि जो यहाँ पवित्रता का ताज धारण नहीं करेंगे, अर्थात स्वर्ग की पवित्र दुनिया बनाने के लिए, पवित्र संगठन बनाने के लिए पुरुषार्थ नहीं करेंगे, अड़चन डालेंगे, विघ्न बनेंगे, तो ऐसी आत्मा पवित्रता का ताज धारण नहीं कर सकती। और उनको जो पवित्रता का ताज धारण करने का पुरुषार्थ करने वाले हैं उनके सामने माथा टेकना पड़े, बुद्धि झुकानी पड़े। तो सतयुग त्रेता के जो पवित्र राजाए थे और द्वापर कलयुग के जो अपवित्र राजाए थे, सतयुग त्रेता में लक्ष्मी नारायण राम सीता का राज्य, फिर बाद में होते हैं विकारी राजा, और वो विकारी राजाएं भी कैसे बनते हैं? वो विकारी राजाएं कैसे बने, इसका भी फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? जो द्वापर में विकारी राजाएं बने उसका भी फाउंडेशन संगम युग में पड़ता है। क्या कि यहाँ और जिम्मेवारी तो सारी धारण करते हैं लेकिन प्योरिटी के पुरुषार्थ की जिम्मेवारी धारण नहीं करते। अंदर में ये उनको पक्का निश्चय नहीं है कि हम इस शरीर से ही पवित्र बनेंगे, इस शरीर से भी ऐसा पुरुषार्थ कर्मेंद्रियों के द्वारा किया जा सकता है जिससे हम नई दुनिया बनाने के कार्य में परमात्मा के इसी जीवन में सहयोगी बने। तो ऐसी आत्माएं जिन्हें इस बात पर निश्चय नहीं है वो पुरुषार्थ भी नहीं करती। तो जब पुरुषार्थ नहीं करेंगी, प्योरिटी का पुरुषार्थ नहीं करेंगी या प्योरिटी की गहराई को पूरा नहीं समझेंगी तो अधूरा पुरुषार्थ होने के कारण वो फिर द्वापर के राजाएं बनेंगे, सतयुग के या त्रेता के पुरुषार्थ को उद्धार करने वाले नहीं बन सकते। गाया भी जाता है पूज्य और पुजारी। पूज्य का आधार क्या है? देवताओं के पूज्य होने का कारण क्या है? प्योरिटी। और पुजारी होने का कारण क्या है? माथा टेकना पड़ता है। जैसे उन साधु सन्यासियों के आगे जो अपवित्र गृहस्थी होते हैं उनको जाकर माथा टेकना पड़ता है, साधु सन्यासियों को फिर कन्याओं को माथा टेकना पड़ता है। क्यों? क्योंकि साधु सन्यासियों के मुकाबले कन्याओं में प्योरिटी जास्ती होती है, तो प्योरिटी ही पूजनीय बनती है, प्योरिटी को ही पूजा जाता है। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट की पूजा नहीं होती, वो जो धर्म गुरु होते हैं, धर्माचारी होते हैं, उनकी पूजा करते हैं क्योंकि हद की प्योरिटी को उन्होंने धारण किया है। पूजा करने वालों के मुकाबले ज्यादा पवित्र है इसलिए पूजा होती है। सतो प्रधान से तमो प्रधान तो सबको जरूर बनना है। ऐसी कोई भी मनुष्य आत्मा सृष्टि पर नहीं है जिसको संग का रंग न लगता हो, सतो प्रधान से तमो प्रधान न बनती हो। सिर्फ एक शिव बाबा ही है जो इस शक्ति पर साकार तन में आता भी है और आने के बावजूद भी उसको संग का रंग नहीं लगता। सतो प्रधान से तमो प्रधान नहीं बन सकता। सब धर्मों का विनाश कराने के लिए उसको विकराल रूप धारण करना पड़े, वो बात दूसरी है। बाकी परमात्मा कभी तमो प्रधान होता नहीं है, ये अज्ञानता है कि परमात्मा भी तामसी होता है। नहीं, उसे तो कहते हैं सप्त चित्त आनंद। तो कहते भी है, हे बच्चे, तुम पहले सतयुग में सतोगुणी महाराजा महारानी थे और पहले संपूर्ण पवित्र थे, ये तुम बच्चों को याद रहता है कि पहले हम पवित्र थे और अब तमो प्रधान अपवित्र है। इस बात को स्वीकार करने में लज्जा क्यों आनी चाहिए? अब हम पवित्र बन रहे हैं, बाकी ये अहंकार नहीं आना चाहिए कि हम पवित्र बन गए। माया ने तुम बच्चों को पुजारी बनाए दिए है। बाप आकर के पूज्य बनाते हैं और माया पुजारी बनाती है। माया कहती है माथा टेको और बाप क्या कहते हैं, बच्चे तुम मेरे को भी माथा मत टेको। क्यों? मन मना भव हो गए तो माथा टेकने की जरूरत नहीं। मन मना भव का मतलब ये है मन मेरे में समा दे। तो जब तेरा मन मेरे संकल्पों के अनुकूल हो जाएगा तो ये स्थूल माथा टेकने की दरकार नहीं। क्यों? माथा तब टेकना पड़ता है जब कोई न कोई बात में अज्ञानता होती। जैसा परमात्मा में ज्ञान, वही ज्ञान हमारी बुद्धि में भी टिक जाए तो संकल्पों से समानता हो गई। जो बात परमात्मा चाहता है हम वही कार्य करेंगे तो फिर माथा टेकने की दरकार नहीं रह जाती। तो माया ने तुम बच्चों को पुजारी बनाया है। ये शिक्षा जो मिलती है वो फिर धारण करना है। क्या शिक्षा? कि मैं तुम बच्चों को पुजारी नहीं बनाता हूँ, माथा टेकने वाला नहीं बनाता हूँ, ये माया रावण तुमको पुजारी बनाता है, पूजा करने वाला बनाता है। मैं तुमको झुकने वाला नहीं बनाता। राजा किसी के सामने झुकता नहीं है। तो मैं तो राजयोग सिखलाने आया हूँ, मैं तुमको झुकने वाला कैसे बनाऊंगा? अधिकारी बनाऊंगा, आधीन थोड़े ही बनाऊंगा। आधीन बनने की शिक्षा कौन देता है? माया रावण तुमको आधीन बनाने की शिक्षा देता है। कॉलेज में जो शिक्षा मिली है, मिलती है, वो भी स्टूडेंट की बुद्धि में रहती है ना। बच्चों की बुद्धि में रहता है हम भारतवासी तो देवता थे। कल्प पहले भी बाप ने आकर के राजयोग सिखाया था, प्रजायोग नहीं सिखाया। प्रजा को माथा टेकना पड़ता है। सत्युग में तो प्रजा भी माथा टेकने वाली नहीं होती। यथा राजा तथा प्रजा दोनों पवित्र होते। तो बुद्धि में रहता है हम भारतवासी सो देवता थे। कल्प पहले भी बाप ने आकर राजयोग सिखाया था। तो मुख्य है गीता की बात, तो जब कोई भी मिले तो बोलो तुमने गीता कब सुनी है, वह गीता कब पढ़ी है, उसमें लिखा हुआ है भगवान वाच। किसने वाच? भगवान वाच। तुम बच्चे जानते हो भगवान ने राजयोग सिखाया था? राजा ही का योग भगवान ने सिखाया था, भगवान ने आकर के राजा रानी बनाया था, राजाओं का राजा बनाया था, और अब किसका राज हो गया? प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य हो गया, राजाओं का राज्य ही खलास हो गया। तो अब जो गीता पढ़ते हो उसमें कौन सा ज्ञान है? भगवान का सिखाया हुआ ज्ञान है या मनुष्यों का सिखाया हुआ ज्ञान है? इससे साबित होता है कि भगवान ने जो योग सिखाया वो तो लोप हो गया, क्योंकि भगवान का सिखाया हुआ अगर योग हम उस गीता में सीखते होते तो हम भी कौन होते? हम भी राजा होने चाहिए, लेकिन हम तो प्रजा हो गए, और प्रजा के ऊपर ही प्रजा का राज्य है। राजा तो अब देखने में नहीं आते सारी धरती पर, किसी धर्म में भी अब राजा ही है ही नहीं। तो उनसे पूछो तुमने कब गीता पढ़ी है, सुनी है, बोलो उसमें है भगवान वाच। और भगवान क्या करता है? राजयोग सिखाता है गीता से। भगवान ने कहा था मैं राजाओं का राजा तुमको बनाऊंगा, उन्होंने फिर कृष्ण का नाम दे दिया। अब कृष्ण तो भगवान नहीं है, कृष्ण तो साकार और भगवान होता है निराकार। निराकार का मतलब ये नहीं कि उसका कोई आकार प्रकार होता ही नहीं और उपवास करता रहता है। कुछ आकार प्रकार होगा तभी तो उपवास करेगा, उपवास माना बोलना। गीता ज्ञान से सुनाने के लिए बोलना तो पड़े, तो कैसे आवाज करेगा? ऐसी तो कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है जैसे मुसलमानों ने लिखा हुआ है अपने शास्त्र में, अल्लाहमिया ने ये फरमाया वो फरमाया, अल्लाहमिया को निराकार मानते हैं, ज्योति मानते हैं, साकार रूप को मानते नहीं। तो अल्लाहमिया ने फरमाया कैसे? क्या ऊपर से आवाज आई? ऐसी कोई बात नहीं। तो कृष्ण तो सत्यों का प्रिंस था, कृष्ण ने ये पद पाया है अपने बाप से। सत्युग में जो कृष्ण प्रिंस बनेगा जरूर किसी महाराजा का बच्चा हुआ, तो जिस महाराजा का बच्चा हुआ तब तो प्रिंस कहा गया। अगर बच्चा न बने तो प्रिंस कैसे कहा जाएगा? लॉर्ड कृष्ण कहते हैं, वो सत्युग के प्रिंस की तो बात ही नहीं। सत्युग में जो प्रिंस बच्चा पैदा होगा वो लॉर्ड कृष्ण नहीं होगा, वो तो इस समय की बात है। इस समय परमपिता परमात्मा जिस ब्राह्मण तन के द्वारा ये राजा की स्थापना का कार्य करते हैं, उसमें वो कृष्ण की सोल भी प्रवेश करके लॉर्ड कृष्ण का पार्ट बजाती है। तो दुनिया में ये लोग समझते हैं कि तू ही राम है, तू ही कृष्ण है। वास्तव में राम वाली सोल अलग और कृष्ण वाली सोल अलग, लेकिन शरीर एक ही होता है। इसलिए वो राम भी हो गया तो कृष्ण भी हो गया, क्योंकि शरीर के ऊपर ही नाम पड़ते हैं। बाकी ऐसे नहीं है कि हर आत्मा का पार्ट एक ही जैसा होगा, नहीं। तो सतयुग का जो कृष्ण है वो सतयुग का कृष्ण तो प्रिंस होता है और अपने बाप से बादशाही लेता है, वो खुद राजा ही नहीं प्राप्त करता। पूर्व जन्म ने पुरुषार्थ जरूर ऐसा किया हुआ है जिससे वो प्रिंस बना, लेकिन नर से प्रिंस बनने का गायन नहीं है। क्या गायन है? नर से नारायण बनने का गायन है। तो कृष्ण की सोल नर से प्रिंस बनने वाली है, नारायण बनने वाली नहीं है। जरूर उसको जो राजाई पद देने वाला उसका पिता है वो डायरेक्ट परमात्मा से पुरुषार्थ करके राजाई का वर्षा लेता है और फिर कृष्ण प्रिंस को देता है। तो इसे साबित हुआ कि कृष्ण ने जो पद पाया है वो अपने साकार बाप से पाया। कृष्ण कोई अकेला नहीं था, लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी, वही राजधानी अब फिर से स्थापन हो रही है। कृष्ण 84 पूरे जन्म लेकर फिर से वो राजाई ले रहे हैं। तो तुम बच्चों की बुद्धि में ये बात आनी चाहिए, 5000 वर्ष पहले भी भगवान ने ऐसे पढ़ाया। भगवान नालिस फुल है, ब्लिसफुल है। कृष्ण को नालिस फुल और ब्लिसफुल आदि ये टाइटल नहीं देंगे। क्या मतलब? सतयुग में की तो सतयुग की तो बात ही नहीं है। सतयुग की कृष्ण की, सतयुग में तो देवताएं बुद्धि होते हैं, वहां तो नालिस की बात नहीं। बात कहाँ की है? जरूर संगम युग पर है। जो कृष्ण वाली सोल है ब्रह्मा, वो शरीर छोड़ने के बाद कोई ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करके पढ़ाई पढ़ती है तो पढ़ाई पढ़ने वाले को नालिस फुल नहीं कहेंगे। नालिस फुल तो वो हुआ जो पढ़ाई पढ़ाने वाला है। निराकारी सोल, सुप्रीम सोल जो पढ़ाई पढ़ाने वाली है, वो एक परम टीचर है, वो एक सतगुरु है और वो ही सुप्रीम बाप है। तो उसी का टाइटल है नॉलेजफुल, ब्लिसफुल। बाप सारी सृष्टि पर तत्वों सहित सब पर ब्लिस करते, यानी कृष्ण की सोल सबके ऊपर ब्लिस नहीं कर सकती। ब्लिस करेगी भी तो सतयुग में जो उसकी प्रजा बनने वाली आत्माएं होंगी उनके ऊपर ही ब्लिसफुल बन सकती है। बाकी सारी सृष्टि माने 500 करोड़ की मनुष्य आत्माओं के ऊपर ब्लिसफुल नहीं बन सकती है। तो जिनके ऊपर ब्लिसफुल बनी होगी प्रैक्टिकल में, वो यहाँ प्रैक्टिकल में शूटिंग पीरियड में पार्ट भी बजाया होगा, तो ब्रह्मा की सोल उन विशेष आत्माओं से साकार में कनेक्टेड होती है जो सतयुग में जाके उसके संगी साथी बनेंगे, उनके ऊपर ब्लिसफुल होती है। बाकी 500 करोड़ के ऊपर ब्लिसफुल नहीं हो सकती। तो सिवाय परमपिता परमात्मा की और कोई ये ब्लिस कर नहीं सकता। ब्लिस अर्थात मेहरबानी। यहाँ तो देखो तत्व आदि सब तमो प्रधान है। बरसात पड़ती है तो कितना नुकसान कर देते हैं, और परमात्मा ने तो मनुष्यों के ऊपर ही ब्लिस नहीं किया था, मेहरबानी नहीं की थी। सारी जो शक्ति है जड़ शक्ति, वो जड़ शक्ति 5 तत्वों सहित मेहरबानी पाने योगी बनी। तत्व भी वहां तमो प्रधान नहीं होते थे। तो अगर कृष्ण की सोल ब्रह्मा के रूप में भगवान बनकर के कार्य करने वाली होती, भगवान वास किया होता, उसने राज्यों को सिखाया होता, तो दृष्टि क्या होनी चाहिए उसके जाने के बाद? सतो प्रधान होनी चाहिए, पांच तत्व भी सतो प्रधान होने चाहिए। तो ब्रह्मा का जो रूप है वो कोई परमपिता परमात्मा का स्वरूप नहीं है। उस ब्रह्मा के द्वारा जो कुछ बोला गया है, ये नहीं कहेंगे कि भगवान हुआ गीता, क्योंकि भगवान आकर के जब राजयोग सिखाते हैं तो प्रवृत्ति में रहकर के राजयोग सिखाते हैं, निवृत्ति में रहकर राजयोग नहीं सिखाते। तो ब्रह्मा सरस्वती की प्रवृत्ति नहीं थी, उनकी भी निवृत्ति थी। क्यों? क्योंकि सरस्वती ब्रह्मा की बेटी थी, लेकिन वही ब्रह्मा शरीर छोड़ने के बाद जब किसी ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करता है तो प्रवृत्ति मार्ग में रह करके पवित्र रहने का पुरुषार्थ करने वाला होता है, और तब ही दूसरों को सिखाया जा सकता है। क्योंकि निवृत्ति मार्ग वाला कभी प्रवृत्ति मार्ग वालों को राजयोग नहीं सिखा सकता। तो देखो, अभी तो पांच तत्व आदि सब तमो प्रधान है, परमात्मा ने राजयोग से जो सृष्टि रची उसमें तो पांच तत्व भी कैसे थे? तत्व प्रधान थे। बरसात पड़ती है, देखो कितना नुकसान कर देते हैं, तूफान लगते रहते हैं, तो ये सब बेकायदे हुआ ना। सत्युग में कोई भी बेकायदे बात नहीं होती, जो नुकसान आदि हो जाए। खेती टाइम पर तैयार होगी, टाइम पर पानी मिलेगा, वहां कोई उपद्रव आदि नहीं होते हैं, तो ये माया के उपद्रव हैं। राज्य किसका है? माया का राज्य है। अभी कोई राम राज्य नहीं आ गया, तो माया के राज्य में जो उपद्रव होते हैं वो दुखी करते हैं। माया का भी अर्थ मनुष्य नहीं जानते। अब तुम समझाते हो, बाप को कहा जाता है परमपिता परमात्मा, परमात्मा यानी परम आत्मा, आत्मा कैसी? परम आत्मा, परम मन, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट के अर्थ में परम शब्द बोला जाता है, सबसे ऊंचा, सबसे महान। तो भेंट किससे की गई, कंट्रास्ट किससे किया गया? नीच और ऊंच, नीच के साथ ऊंच का कंट्रास्ट किया जाएगा, तो ये कंट्रास्ट क्या सुप्रीम सोल का होता है? परम आत्मा, आत्माओं में जो परम है, तो सुप्रीम सोल आत्माओं के साथ उसके कंट्रास्ट नहीं हो सकता, वो तो तुरीय है, सबसे अलग है। तो जिसका कंट्रास्ट किया गया वो है प्रजापिता वाली सोल, आत्माओं के बीच में परम, उसी में वो सुप्रीम सोल प्रवेश करके परमात्मा का, परम पिता का पार्ट बजाता है। तो बोलना भी ऐसे चाहिए एक्यूरेट, परम आत्मा, ताकि बुद्धि खुले। कैसी आत्मा? परमात्मा। और तो सब आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं हैं, लेकिन वो है परम पार्ट बजाने वाला, हीरो पार्ट बजाने वाला। तो गीता में है भगवान उवाच, तो जो उवाच करने वाला है वो साकार भी है, और सारी सृष्टि पर भगवान के रूप में माना जाने वाला भी है, उनको कहते हैं गॉड फादर। सब धर्म के लोग उसको मानते हैं, कृष्ण को सब धर्म के लोग नहीं मानेंगे। तो गीता में भगवान वाच है, परंतु मनुष्यों ने रुद्र शिव के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया। तो रुद्र से कृष्ण बच्चा पैदा हुआ, ऐसे नहीं कहेंगे शिव सुप्रीम सोल से कृष्ण बच्चा पैदा हुआ। सुप्रीम सोल तो ज्योति बिंदु का नाम है शिव, और बच्चा है साकार, तो साकार की पैदाइश साकार से होगी या निराकार बिंदु से होगी? साकार को पैदा करने वाला साकार। तो वो शिव ज्योति बिंदु ही जब साकार में प्रवेश करता है, तो यज्ञ के आदि में रुद्र ज्ञान यज्ञ रचता है, और अंत में वही रुद्र जो रौद्र रूप धारण करता है, विकराल रूप धारण करके सब धर्मों का संहार करता है, सारी तमो प्रधान शक्ति के कचड़े में आग लगाता है, वही रुद्र कृष्ण बच्चे को जन्म देने वाला बनता है। तो रुद्र से कृष्ण बच्चा पैदा हुआ, तो उसमें बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया है गीता में। बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूं, जो तुमको कभी भी कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे। कर्म कूटना माना क्या हुआ? मैं ऐसे कर्म सिखलाता हूं जो तुमको कभी कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे। कर्म कूटना माना सहज सहज चलते रहो, कोई भी तकलीफ तुमको महसूस नहीं होनी चाहिए। अगर तकलीफ महसूस होती है पुरुषार्थ करने में, मेहनत महसूस होती है, तो जरूर परमात्मा के हम डायरेक्शन पर पूरे पूरे नहीं चलते। आती हुई ये भी क्या है? कर्म भोग है ना, ये कर्म कूटना पड़ा ना, देवाला हमारा ये भी कर्मों का कूटना हुआ। तुमको बाप श्रेष्ठ कर्म सिखलाते, जो भी जितना सीखेंगे उतना उच्च पद स्वर्ग में पाएंगे। जैसे नाटक में कोई तो रिजर्व सीट लेते हैं स्पेशल, फिर नंबर वार सेकंड क्लास थर्ड क्लास भी सीट होती है। अच्छे अच्छे आदमी नजदीक में सीट लेते हैं। किसके नजदीक? जो हीरो है हीरोइन है, तो हीरो के साथ हीरोइन होगी। अच्छे अच्छे आदमी नजदीक में सीट लेते हैं, तो पढ़ाई में भी नंबर वार होते हैं। जैसी जैसी पढ़ाई वैसे वैसा सीट, वैसे वैसा पद। बाप कहते हैं मैं तुमको मालिक बनाने आया हूं, जितना जो पढ़ेगा। पढ़ाई तो बहुत सिंपल है, पढ़ाने वाला है निराकार। उनको न व्यास और न कृष्ण आदि नाम है। जो पढ़ाने वाला है उसका व्यास भी नाम नहीं है, तो कृष्ण भी नाम नहीं है। व्यास किसका नाम है फिर? खींचने वाला, क्योंकि पवित्र पुरुषार्थ करके पवित्रता का वो दूसरों की आत्माओं को खींचने योग्य बन जाती है, आकर्षण करने योग्य बन जाती है राजयोग के पुरुषार्थ के आधार पर। तो बोला चित्र तो सबके हैं, व्यास के भी चित्र हैं, कृष्ण के भी चित्र हैं, ब्रह्मा का भी चित्र है, सूक्ष्म बाय स्थूल चित्र तो हैं, लेकिन उनको भगवान नहीं कहा जाता। भगवान तो एक ही है जिसको शिव कहते हैं। बल मंदिर कितने भी हैं, परंतु उनका नाम असल एक ही है। कौन सा असली नाम है? भगवान का असली नाम शिव। फिर रुद्र किसका नाम है? रुद्र जरूर जिस शरीर में प्रवेश करता है, यज्ञ के आदि में भी रुद्र रूप धारण किया था, स्थापना के साथ से यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई थी, तो यज्ञ कुंड में खेड़ बखेड़ा हो गया, तो जो आदि में हुआ वो सब अंत में भी होता है। तो असल नाम एक ही है शिव, वो कभी नहीं बदल सकता। वो है निराकार परमपिता परमात्मा। ये किसने कहा? निराकार आत्मा ही कहती है कि परमपिता परमात्मा परम धाम में रहते हैं, हम आत्माएं उनकी संतान हैं। जब परमात्मा है तो रहेगा कहाँ? परम स्थान में ही रहेगा। राजा होगा तो उसकी सीट कहाँ होगी? नीचे होगी क्या? ऊंची गद्दी पर होगी। तो हम आत्माएं उनकी संतान है, माना उनकी रचना है। हम भी वहां से आए हैं पार्ट बजाने के लिए। अब एक एक एक्टर की बायोग्राफी तो नहीं बताएंगे। 500 करोड़ एक्टर्स हैं तो दुनिया में, परमात्मा बाप आकर के एक एक एक्टर की अनेक जन्मों की बायोग्राफी बताएंगे क्या? नहीं, मुख्य मुख्य की बताई जाती है और फिर मुख्य मुख्य के आधार पर उनकी जो रचना है उसका भी मालूमात हो सकती है। तो मुख्य का बताया जाता है। यहाँ भी बड़े बड़े आदमियों की बायोग्राफी बताते हैं ना। अब सारी बेहद सृष्टि में ऊंचते ऊंचे मनुष्य कौन है? कौन है ऊंचते ऊंचे मनुष्य सारी सृष्टि में? कौन है वो? तो दुनिया में तो लोग जानते ही। दूसरे धर्म वाले कहेंगे इब्राहिम, बुद्ध है, क्राइस्ट है, गुरु नानक, विवेकानंद वगैरह वगैरह। और जो ब्राह्मण है वो कहेंगे वो तो ऊंचे ऊंचे धर्म पिता हैं अपने अपने धर्मों में, लेकिन उन पिताओं का भी कोई बापों का भी कोई बाप है जिसको सारी दुनिया नहीं जानती। हम ब्राह्मण बच्चे जान सकते जानते हैं। तो ये समझना चाहिए। हम एक्टर्स को बाप बैठ समझाते हैं। क्रिएटर कौन है? डायरेक्टर कौन है? एक बाप ही क्रिएटर है जो ड्रामा क्रिएट करने वाला है। पर्दे के पीछे रहता है, गुप्त रहता है और डायरेक्शन देता है। उस बाप के डायरेक्शन को फॉलो करते हैं, उस बाप को पहचानते हैं। उन अच्छे अच्छे एक्टर्स की नजर किसके ऊपर रहती है? पर्दे के पीछे डायरेक्शन देने वाले बाप के ऊपर उनकी नजर रहती है। तो जो जितना कंसंट्रेटेड होता है एक्टर, उतना अच्छा पार्ट बजाता है। डायरेक्शन देते हैं ब्रह्मा को कि तुमको देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है कि नहीं है? तुमको देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना करनी है। तो ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया। क्या देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना हो गई? अच्छा, देवी देवता धर्म छोड़ो। बाप कहते हैं मैं तीन धर्म स्थापन करता हूँ, ब्राह्मण धर्म, क्षत्रिय धर्म, देवता धर्म। तो क्षत्रिय धर्म की स्थापना हो गई? ये भी नहीं कह सकते कि क्षत्रिय तो बनने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। क्षत्रिय तो वो जो फेल हो गए। तो जब पढ़ाई चल रही है, फाइनल एग्जाम नहीं हुआ है, फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, तो किसको कहा जाए कि कौन क्षत्रिय और कौन देवता? तो सब अभी ब्राह्मण वर्ण में तो हैं। ब्राह्मण धर्म तो स्थापन हुआ, नंबर वार ब्राह्मण तो बने हैं, लेकिन अभी कोई क्षत्रिय धर्म और देवता धर्म की स्थापना नहीं कही जाएगी। जब तक रिजल्ट नहीं निकलता है तब तक, तो ब्रह्मा द्वारा देवता धर्म की स्थापना करनी है, स्थापना करके फिर तुमको जाकर पालना करनी है। हम नहीं करेंगे पालना, तुमको सिखलाते हैं, डायरेक्शन देते हैं ना, करण करावन हार है ना, तो करणहार किस स्वरूप से, कर्म करके किस स्वरूप से दिखाता है, करणहार का गायन पहले और करावनहार का गायन बाद में, क्यों जरूर है। कृष्ण वाली सोल जो ब्रह्मा का पार्ट है उस स्वरूप से कर्म करके दिखाते हैं, खुद करते हैं कर्म, करणहार का पार्ट है। फिर जो बच्चे देख करके कर्म, अच्छे कर्म करना सीखते नहीं है, विपरीत चलन चलते हैं, अपने को सुधारने का पुरुषार्थ नहीं करते, तो उन लेफ्टिस्ट बच्चों को सुधारने के लिए फिर बाप को टेढ़ा रूप अपनाना पड़ता, फिर वो करणहार का पाठ नहीं बजाता। कर्म करे या न करे खुद, लेकिन बच्चों से जरूर कराएगा, हर हालत में कंपेल करेगा। क्या करेगा? कंपेल,
कंपेल में आए,
कर्म करने पड़े, खुद कर्म करे या न करे, तो करावनहार का भी पार्ट बाद में बजाता है। खुद करते भी हैं तो ब्रह्मा द्वारा कर्म करके सिखाए, और ब्रह्मा ने अब शरीर छोड़ दिया तो अब क्या पार्ट बजाते बाद में, करावनहार का पार्ट बजाते। नाले सुनाते हैं और तुमसे कराते भी है ना, ऐसे थोड़े कि नाले सुना करके वापस चले जाएंगे। ब्रह्मा द्वारा नाले सुनाई और वापस चले गए, ऐसे थोड़े भक्त लोग बुलाते हैं कि हे पति तो पावन आओ हमको ज्ञान सुना के वापस चले जाओ। पतित पावन को क्यों बुलाते हैं? पतितों को पावन बनाने के लिए। तो ऐसे नहीं है कि बीच में वापस चला जाएगा, पढ़ाई पढ़ा करके, पढ़ाई भी पढ़ाता है और फिर पतितों को पावन भी बनाता है। तो पावन बनने के जो पावन कर्तव्य हैं वो भी बच्चों को करने पड़े। करावन बाप, करावनहार बाप किसी न किसी प्रकार से, सीधे तरीके से या टेढ़े तरीके से, उनसे कराएगा जरूर। तो कराते भी है ना, श्रीमत मिलती है, यह करो, क्या करो, क्या श्रीमत मिलती है यह करो, मुख्य श्रीमत क्या है, इस ज्ञान की राज्यों की मुख्य श्रीमत क्या है, क्या करो, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो माना ब्रह्मा कुमार कुमारी बनो, भाई बहन आपस में बनो, अंदर से ये अनुभूति होने लगे कि अब हम भाई बहन जैसी स्टेज पर आ गए। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, एक ही घर में रहते हैं, एक बच्चे का स्त्री चोला, दूसरे बच्चे का पुरुष चोला, लेकिन साथ में रहते हैं, साथ में सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन उनको वो शरीर का आकर्षण नहीं होता, कोई बुद्धि विचलित नहीं होती है। तो ऐसी स्टेज धारण कर ली, तो बताया श्रीमत मिलती है यह करो, ड्रामा अनुसार ब्रह्मा ये स्थापना करके फिर राज्य करेंगे। ये ड्रामा बना हुआ कि ये कार्य ब्रह्मा ही करेंगे, ऐसे नहीं कि ब्रह्मा शरीर छोड़ करके चले गए फिर ब्रह्मा कुमार कुमारी ये कार्य करते रहेंगे, और ब्रह्मा का कार्य खलास आपको कृष्ण में सतयुग में जाके कृष्ण बच्चा बन जाएगा, नहीं, वो कृष्ण बच्चा भी तब बनेगा जबकि जो मुख्य पढ़ाई है घर गृहस्थ में रहते, साथ में रहते, साथ में सोते, खाते पीते और विकारों पर विजय प्रैक्टिकल जीवन में करके दिखाए, तो ब्रह्मा की सोल ने तो शरीर छोड़ दिए, तो दिखाएगा कैसे? और ब्रह्मा नहीं दिखाएगा तो ब्रह्मा कुमार कुमारी कैसे करके दिखाएंगे? तो ऐसी बात नहीं, ब्रह्मा की सोल भी कोई ब्राह्मण बच्चों में प्रवेश करती है, मम्मा बाबा वाली आत्माएं भी बच्चों में प्रवेश करके पार्ट बजाती है, सर्विस करती है, तो नंबर बार बच्चे होंगे जिनमें प्रवेश होकर के पार्ट बजाते। तो ब्रह्मा की सोल भी पढ़ाई पढ़ रही है और पवित्रता का पुरुषार्थ कर रही है। ब्रह्म अनुसार ब्रह्मा ये स्थापना करके फिर राज्य करेंगे। ये पवित्रता की स्थापना जब तक अपने जीवन में नहीं की तब तक उनको भी राज्य नहीं मिल सकता। ब्राह्मण ब्राह्मणियां भी राज्य करेंगे, ऐसे नहीं कि ब्रह्मा सरस्वती की आत्मा ही प्रवेश करके राज्य करेंगी, जो ब्राह्मण बच्चे हैं नंबर बार वो भी राज्य करेंगे। पहला कौन सा राज्य होगा? पहले होगा कर्म इंद्रियों के ऊपर राज्य। वो कर्म इंद्रियों के ऊपर राज्य हम खुद भी महसूस करें और दूसरी आत्मा भी महसूस करें। सूत्र तो ये काम नहीं करेंगे, ये कार्य सूत्र नहीं कर सकते। तो बाप समझाते हैं मैं निराकार एक हूँ और सब साकारी। अब वो निराकार परमपिता परमात्मा आत्माओं को मत देते हैं, क्या देते हैं? श्रेष्ठ मत। तो निराकार कैसे मत देगा? निराकार है माने बिंदु है तो मत कैसे देगा? मत देने के लिए तो उसको साकार शरीर धारण करना पड़े ना। तो साकार शरीर तो धारण करते हैं लेकिन निराकारी स्टेज में रहने वाला होता है वो मत देने वाला। जैसे इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट निराकारी स्टेज में चेहरे से देखने में आते हैं। बुद्ध का चेहरा देखो, चित्र देखो, क्राइस्ट का चित्र देखो, गुरु नानक का चित्र देखो, देखने से ही पता चलता है कि उनकी स्टेज कैसी है, निराकारी। बाप होता है निराकारी, वो भी धर्म पिता है, लेकिन उन बापों का भी कोई बाप है जो भारतीय परंपरा में जिसका चित्र सदा निराकारी स्टेज में दिखाया जाता है। तो वो चित्र है जिससे वो चरित्र जाहिर होता है वो है शंकर, एकदम निराकारी स्टेज। तो बताया कि वो निराकार बाप आत्माओं को मत देते हैं, आत्मा इन कानों से सुनती है, मुख से बोलती है। तो सबसे मुख्य हुआ परमपिता परमात्मा है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वचनवासी, फिर संगम योग पर है जगदम्बा और सरस्वती और जगत पिता ब्रह्मा। तो ये बड़े से बड़े हैं, इन द्वारा रचना होती है। तुम सब मिलकर के भारत को स्वर्ग बनाते हो। कौन कौन मिलकर के स्वर्ग बनाते हैं भारत को? जब तक आपस में मिलकर के ये स्वभाव संस्कार से एक न हो जाए तब तक स्वर्ग नहीं बन सकता। तो किनका किनका नाम लिया कि तुम सब मिलकर के भारत को स्वर्ग बनाते हो? पहले पहले कौन मिलेंगे, किनके संस्कार मिलकर के एक होंगे? जगदम्बा, सरस्वती, जगत पिता ब्रह्मा। जगदम्बा माने सारे जगत की माँ, तो वो कौन हुई? सारे जगत की माँ तो जरूर कोई आदि में कोई ऐसी माँ होनी चाहिए। आदि पार्ट था, ऐसी ऐसी बच्चियां थी जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देती थी, ड्रिल कराती थी, टीचर बनकर के बैठती थी। हम समझते थे ये तो बहुत अच्छा नंबर माला में आ गई। तो जगदम्बा, सरस्वती तो जगदम्बा हुई जगत की माता, फिर सरस्वती और जगत पिता ब्रह्मा। जगत पिता कौन? सारे जगत का पिता, वो सारे जगत की अम्बा और वो सारे जगत का पिता। तो ये बड़े से बड़े हैं, ये चार आत्माएं हैं, इनके संसार मिलकर के जब तक एक न हो तब तक स्वर्ग की स्थापना नहीं हो सकती। क्या संसारों में भेद है? जगत पिता जगत अम्बा ये हैं रुद्रमाला के मुख्य मण के, और फिर है ब्रह्मा और सरस्वती, ये हैं विजयमाला के मुख्य मण के। तो जो विजयमाला के मुख्य मण के हैं वो तो नाम ही है वैजयंती माला, अंत में जिन्होंने विकारों पर विजय पहले प्राप्त की, तो वह विशेष है, लचीले स्वभाव वाली आत्माएं, सहनशीलता का गुण धारण करने वाली आत्माएं, सहनशीलता है सर्व गुणों का राजा, देवी देवता सनातन धर्म की मुख्य आत्माएं। और दूसरी है सामना करने का जिनमें गुण ज्यादा है, क्षत्रिय धर्म की विशेष आत्माएं राम और सीता। तो राम सीता और राधा कृष्ण ये चार आत्माओं के संस्कार मिलकर के जब तक एक न हो जाएं तब तक स्वर्ग की स्थापना का फाउंडेशन नहीं कहा जाए। तो ये बड़े से बड़े हैं, इन द्वारा रचना होती है। तुम सब मिलकर के भारत को स्वर्ग बनाते हो बाप की मदद से। बाप क्या सहयोग अगर न मिले श्रीमत देने के लिए तो ये चारों आत्माएं मिलकर के स्वर्ग नहीं बना सकती। तो तुम मनुष्य से देवता बनाते हो क्या? ऐसे नहीं जो आया ब्रह्मा कुमार कुमारी वो ही कि वो हम कह के बैठ जाए कि हमारे में शिव बाबा आता है, हम ही स्वर्ग की रचना करेंगे, हम ही श्री श्री 108 की माला बनाने वाले, श्री श्री 108 है। ऐसे नहीं हो सकता, वो विशेष आत्मा निमित्त बनी हुई है विष्णु की चार भुजाओं के रूप में। तो वही आत्मा मनुष्य से देवता बनाने का कार्य परमपिता परमात्मा की मदद से संपन्न करती। मनुष्य तो आसुरी काम करते, इसलिए आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। सत्युग में होते हैं दैवी संप्रदाय, बाप कहते हैं हम तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूं जो तुम कब दुखी नहीं होंगे। अगर दुखी होते हैं तो जरूर हमने जो कर्म किया और उसका फल अगर दुख हुआ तो हमने परमात्मा की मत पर वो कार्य नहीं किया है, जरूर कुछ न कुछ उसमें मनमत या माया की मत या माया का प्रभाव ऐड हो गया। अब सारा मदार है तुम्हारे पुरुषार्थ पर, चाहे बाप का बन फर्स्ट क्लास टिकट लो सूर्यवंशी बनो और चाहे चंद्रवंशी बनो, ये तो जानते हो तुम्हारे मम्मा बाबा सबसे जाति पुरुषार्थ करते हैं, सर्विस करते हैं, वह तो महाराजा महारानी बनेगी। कौन कौन? मम्मा बाबा है कांगे, कौन से मम्मा बाबा? इसलिए मुझे बोला वास्तव में इन ब्रह्मा सरस्वती को भी मम्मा बाबा नहीं कहेंगे, इन ब्रह्मा सरस्वती को वास्तव में मम्मा बाबा नहीं कहेंगे। तो जरूर है कोई और आत्माएं भी हैं जो आज में भी मम्मा बाबा थी, पीयू का पार्ट बजाया था, यदि माता का पार्ट बजाया था, वो आत्माएं फिर बाद में प्रत्यक्ष होती है ब्राह्मणों की दुनिया में, और उनमें मम्मा बाबा यानी ब्रह्मा सरस्वती दादा लेखराज और ओम राधे की सोल उनमें प्रवेश करके पार्ट बजाती है। तो तुम ये जानते हो तुम्हारे मम्मा बाबा सबसे जास्ती पुरुषार्थ करते हैं, सर्विस करते हैं, तो उसका फल क्या होगा? वह तो जरूर महाराजा महारानी बने। सचिव के महाराजा महारानी नहीं, क्योंकि सचिव के महाराजा महारानी को डायरेक्ट ईश्वर से वर्षा नहीं मिलता। किसको मिलता है डायरेक्ट ईश्वर से वर्षा? जो संगम युग में 21 जन्मों में से पहले जन्म की बादशाही, उस बादशाही का वर्षा जो तुम्हारे मम्मा बाबा हैं, सबसे जास्ती पुरुषार्थ करने वाले यज्ञ के आदि में भी थे, वही यज्ञ के अंत में फिर प्रत्यक्ष होते हैं। और विश्व की बादशाही का वर्षा माने महाराजा और महारानी का वर्षा डायरेक्ट ईश्वर से प्राप्त करते हैं। और तुम उनों की गद्दी पकड़ेंगे ना, ये नापास हो जाएंगे। देखो जगदम्बा का कितना मान है, कितना नाम है, ब्रह्मा का इतना गायन नहीं है, इतना मान नहीं है, इतना पूजन नहीं है, क्योंकि तन पुरुष का था। तो वास्तव में ये ब्रह्मा जगदम्बा है। तो कौन सा ब्रह्मा जगदम्बा? वही आदि ब्रह्मा। तो बताया सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी, तो दोनों का मंदिर अलग अलग कर दिया है। ब्रह्मा का मंदिर अलग और सरस्वती का मंदिर अलग। ब्रह्मा का भी अजमेर में बड़ा मंदिर है, मंदिर तो बड़ा है लेकिन उसमें ब्रह्मा के रूप की चित्र की पूजा नहीं होती है। कोई जाकर के उसमें पूजा नहीं करता, यादगार मंदिर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? सिर्फ अजमेर में। नाम रख दिया अजमेर। अज माने भेड़ बकरी, अज माने बकरी, मेढ़ माने मेढ़ा। जो भेड़ बकरियों का देश है वहां नाम रख दिया अजमेर। क्यों? वहां ब्रह्मा पार्ट बजाता है। अर्थात जो अपनी बुद्धि को अप्लाई नहीं करते, भेड़ बकरियों की तरह अपना जीवन जीने वाले हैं, उनके बीच में ब्रह्मा का चित्र रख दिया जाता है। अब वो चित्र जड़ चित्र का जो रूप रखा गया है वो कहाँ की यादगार हुई? जरूर संगम युग में जो चैतन्य पार्ट बजाने वाला ब्रह्मा होगा, वो भी भेड़ बकरियों के बीच में उसने पार्ट बजाया होगा। जो अपनी अकल का पुरुषार्थ नहीं करते, अपनी अकल नहीं चलाएंगे, बंदाश करके पीछे पीछे चलने वाले होंगे जैसे भेड़ बकरियां। एक बकरी या घेटा जहां चलेगा उसी के पीछे पीछे सब जाकर के गड्ढे में गिर जाएंगे। तो ब्रह्मा का भी अजमेर में बड़ा मंदिर है, तो वो है जगत माता और वो है जगत पिता। क्या? वो है जगत माता और वो है जगत पिता। ये है जगत को रचने वाले। क्या ये बिच्छु चिन्ह रखते हैं? है? जगत पिता और जगत माता का जो पार्ट बजाने वाले इतने सशक्त पार्टधारी होंगे, जिनकी हर धर्म में मान्यता है, एडम ईव आदम और हवा के रूप में, तो क्या वो बिच्छू टिंडन की दुनिया रचेंगे? बिच्छू टिंडन माना? बिच्छू टिंडन क्या करते? एक दूसरे को काटते रहेंगे, दुख देते रहेंगे, धक्के देते रहेंगे, लत संग बनाएंगे, एक दूसरे को लात मारते रहेंगे। तो ऐसी बिच्छू टिंडन की दुनिया परमात्मा मम्मा बाबा के द्वारा नहीं रचता। तो पूछना चाहिए, तुमने कब सुना है भगवान वाचन? मुख्य है गीता, बाकी सब शास्त्र हैं उनके बाल बच्चे। मुख्य धर्म चार हैं, फिर तो बहुत छोटे छोटे मठ पंथ आदि निकलते रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये भी शूटिंग कहाँ होती है? ये भी शूटिंग संगम युग में होती है, क्योंकि ब्राह्मण भी सब एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे दुनिया के 9-10 धर्म मुख्य हैं, देवी देवता क्षत्रिय धर्म इस्लाम धर्म से लेकर के आर्य समाज और नास्तिक रसिया के 9-10 डालियां मुख्य हैं। ऐसे ब्राह्मणों की भी 9 कुरियां होती हैं, भक्ति मार्ग में भी 9 कुरी के ब्राह्मण होते हैं, 9 गोत्र होते हैं, उनके भी मुख्य 9 ऋषि जो मुखिया माने गए आदि, जिनसे वो 9 गोत्र माने गए हैं शुरुआत। तो ये कहां की बात है, जरूर ब्राह्मणों के संगम युग की दुनिया में ही ये 9 नारायण बनने वाली आत्माएं हैं, जो संगम युग का नारायण और सचिव के 8 नारायण, ये 9 नारायण मिलकर के 9 गोत्र बनते हैं, 9 गोत्रों को शुरुआत करने वाले। बड़ा भी कोई होगा और फिर छोटे मोटे भी मठ पंथ के आधार होंगे। तो मुख्य धर्म है 4, कौन कौन से? देवता धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म और क्रिश्चियन धर्म। ये 4 हैं मुख्य, और बाकी बाद में जितने से आते हैं वो सब छोटे छोटे मठ पंथ हैं, जो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। क्राइस्ट के बाद जो पीरियड आया द्वापर युग में, वो वैश्यवर्ण की आत्माएं भी तमो प्रधान होने लगी, और उसके बाद कलयुग प्रत्यक्ष हो गया। नाम ही बड़ा कलह युग, तो कलयुग तब आते आते और द्वापर युग के अंत में तमो प्रधान द्वापर में जितने भी धर्म पिताएं उस समय से लेकर आए बाद में, वो सब कलह क्लेश की दुनिया बनाने वाले बन पड़े। द्वापर युग के अंत से ही धर्मों का टकराव शुरू होता है। उससे पहले धर्मावलंबी आपस में टकराते नहीं थे, धर्म की बातों को लेकर के झगड़े नहीं करते थे। तो छोटे छोटे मठ पंथ आए तो देखो जहां तहां कितना झगड़ा लगा पड़ा है, पार्टीशन बहुत हो जाता है। सतयुग में तो ऐसे नहीं होता है, तो बात समझाते हैं मीठे लाड़ले बच्चे, इस ड्रामा को अब तुमको समझना है। जब ड्रामा है तो जरूर ड्रामा की शूटिंग भी होती होगी, ड्रामा की रिहर्सल भी पहले होती होगी, तो ये तो जानते हैं हम आत्माएं परम धाम से आती हैं। ड्रामा के एक्टर्स भी कहां से आते हैं? अपने घर से आते हैं एक्ट करने के लिए। तो आत्मा परम धाम से आती हैं, गर्भ जेल में जाकर के फिर चोला धारण करके पार्ट बजाते हैं। अभी हमारा पार्ट पूरा हुआ, फिर ये शरीर छोड़ नंगा होकर के जाना है। बाप आया हुआ, शिव जयंती भी है, जरूर शिव बाबा कैसे किसने आया और क्या करके किया, ऐसे नहीं आया तो लेकिन किया कुछ भी नहीं। जैसे और धर्म पिताएं आए और अपने धर्म की धारणा स्थापन करके वापस चले गए, न पुराने धर्मों का पुरानी मान्यताओं का विनाश हुआ और नई दुनिया की राजधानी स्थापन हुई, ऐसे ही सब वापस चले गए। तो अगर ऐसे ही परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आता है ब्रह्मा के तन में और वापस चला जाता है, तो किया तो कुछ भी नहीं। परमात्मा का मुख्य कार्य क्या है जो दूसरे धर्म पिताओं से विशेष न्यारा पड़ता है? और धर्म पिताएं सिर्फ अपने धर्म की स्थापना करते हैं, अपने ज्ञान की धारणाओं की स्थापना करते हैं, लेकिन राजा ही स्थापन नहीं करते, राजधानी नहीं बनाते और दूसरे धर्मों का विनाश भी नहीं करते। क्या करते हैं? सिर्फ अपने धर्म की स्थापना करके वापस चले जाते, शरीर छोड़ देते। और परमपिता परमात्मा क्या करते हैं, सात धर्मों का विनाश और एक सद्धर्म की स्थापना और सब राजाइयों का विनाश और एक राजाई और एक राजा की स्थापना। तो ये कार्य परमात्मा करके जाता है, ये कार्य कोई मनुष्य आत्माओं का कार्य नहीं है। ऐसे नहीं कि सैकड़ों और हजारों मनुष्य मिलकर के ये सारा कार्य संपन्न करते, नहीं। इस कार्य में जो मुख्य सहयोगी बनते हैं वो तो है मुख्य चार आत्मे, राम कृष्ण और उनकी सहयोगी शक्ति। तो कैसे आया और किस में आए, क्या आकर के किया, जरूर भारत को स्वर्ग बनाया होगा। जरूर शब्द क्यों लगाया, ऐसे नहीं कि पढ़ाई पढ़ा के वापस चला गया और स्वर्ग बनाई नहीं। बिच्छू टिंडन के बिच्छू टिंडनों की दुनिया बनी रही। बाप ना आए तो बच्चों को कौन सिखलाएगा। और सबकी मत है कलयुगी आसुरी मत, उनसे श्रेष्ठ नहीं बन सकते। अब मैं तुमको सुमत देता हूं।